श्रीमद्भागवतम तीसरा स्कंध 25वां अध्याय भक्ति योग की महिमा श्लोक संख्या 15। चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सप्तम् बन्धाय रतम् वा पुंसि मुक्तये। चेतः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है, किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। यहाँ पर कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश देना प्रारंभ कर रहे हैं और शुरुआत में ये बता रहे हैं कि एक बद्ध जीवन में और कृष्ण भावना भावित जीवन में बहुत अंतर होता है। अंतर केवल चेतना का होता है। चेतना जब शुद्ध होती है तो वो कृष्ण भावना भावित होती है। जब चेतना दूषित होती है तो उसे बद्ध जीवन कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे कि जिस तरह से बरसात का जल बिल्कुल शुद्ध होता है, आसमान से बादलों से जब वर्षा होती है तो पानी बिल्कुल साफ होता है, उसमें कोई मल नहीं होता, लेकिन जब वही जल पृथ्वी का स्पर्श करता है तो फिर वो दूषित हो जाता है। वास्तव में जल कभी दूषित नहीं होता, जल तो जल ही है, शुद्ध ही रहता है, लेकिन मिट्टी के स्पर्श की वजह से जल के अलग अलग रंग दिखाई पड़ते हैं। जैसे मिट्टी का रंग होता है वैसे जल का रंग बन जाता है। मिट्टी के अलग अलग तरह के रंग होते हैं, कभी मिट्टी का रंग काला होता है, कभी मिट्टी का रंग कोई और रंग हो जाता है, अलग अलग रंग होते हैं मिट्टी के। तो जिस तरह की मिट्टी के का स्पर्श जल कर देता है उसी रंग के हिसाब से जल का रंग बन जाता है, इसलिए हम जल को भी अलग अलग रंग के देखते हैं, लेकिन जल का वास्तव में कोई रंग नहीं होता है। ठीक उसी तरह से अपने मूल स्वरूप में चेतना शुद्ध होती है, लेकिन जब ये चेतना का स्पर्श भौतिक गुणों से होता है तो फिर ऐसे प्रतीत होता है कि चेतना ने इन तीन गुणों के लक्षणों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन वास्तव में चेतना हमेशा इन गुणों से भिन्न रहती है। जिस तरह से जल हमेशा मिट्टी से स्पर्श करते हुए भी मिट्टी से भिन्न रहती है, तो जिस तरह से मिट्टी के अलग अलग रंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि मिट्टी के जल के भिन्न भिन्न रंग होते हैं, उसी तरह से प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के स्पर्श से ऐसा प्रतीत होता है कि चेतना के अलग अलग लक्षण हैं। कभी सत्वगुण का स्पर्श करती है चेतना तो ऐसा लगता है कि यह सत्वगुण की चेतना है, कभी रजोगुण की चेतना करती है, रजोगुण का स्पर्श करती है चेतना तो लगता है कि यह रजोगुणी चेतना है, और इस तरह से अलग अलग चेतना गुणों का और गुणों के मिश्रणों का स्पर्श करने से चेतना अलग अलग स्वरूप धारण करती है। इसलिए चेतना रंग बिरंगी हो जाती है। वैसे चेतना का कोई रंग नहीं है, जिस तरह से जल का कोई रंग नहीं होता, लेकिन भौतिक गुणों का स्पर्श करने से रंग बिरंगी हो जाती है। अलग अलग तरह की चेतनाएं अलग अलग शरीर के हिसाब से मिल जाती हैं आत्मा को। इसलिए पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जयगुणे कारणं गुणसंगोस्य सत् असत् योनि जन्मसु। जब जीव अपने शुद्ध चेतना को त्यागता है जो कि कृष्ण की सेवा का है और भोग करने की इच्छा रखता है तो उसे यह भौतिक संसार में भेजा जाता है और यहाँ पर आकर फिर उसे नाना प्रकार के योनियों में, सत असत योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। कृष्ण बाहिर्मुख होन भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे चपटिया धरे। आचार्य बताते हैं कि जब जीव कृष्ण को भूल जाता है और भोग करने की इच्छा रखता है तब पास में जो माया देवी खड़ी होती है झपट के उसके पकड़ लेती है और उसे अपने वश में कर लेती है। वश में करने के पश्चात उसे भौतिक संसार में फेंक देती है, जाओ भोग करो, और फिर जीव जाके संसार में भटकते रहता है, कभी इस योनि में कभी उस योनि में। इस तरह से जीव का भ्रमण हमेशा चलता रहता है। तो इस तरह से चेतना जो मूल रूप में शुद्ध है वो दूषित हो जाती है, और ये दूषित होने के भी अलग अलग तरीके हैं, और इनको 84 लाख योनि कहते हैं। ये 84 लाख योनि क्या है? केवल चेतना के प्रदूषण के अलग अलग स्वरूप है। जो अलग अलग तरीके से चेतना दूषित हो सकती है वो ये 84 लाख योनि है। बस एक तरह से दूषित हो सकती है तो कुत्ते का शरीर हो जाता है, दूसरे तरह से चेतना दूषित हो जाती है तो बिल्ली का शरीर हो जाता है, और एक तरीके से दूषित होती है तो मनुष्य का शरीर बन जाता है। इस तरह से ये 84 लाख योनि क्या है? केवल अलग अलग तरह से उस मूल रूप से शुद्ध जो चेतना है उसको ढकने के ये केवल आवरण है या निमित्त है। शास्त्र में बताया जाता है कि 5 तरह के चेतना होते हैं भौतिक संसार में। 5 तरह के चेतना सबसे पहले है जो पूरी तरह से ढकी हुई चेतना है, कवर्ड कॉन्शियसनेस। ये पूरी तरह से ढकी हुई चेतना का उदाहरण है बहुत ही मूल, जैसे जड़ रूप से जो है, जैसे कि पेड़ वृक्ष इत्यादि। तो पेड़ में भी चेतना होती है, लेकिन ये चेतना इतनी ढकी हुई होती है कि बाहरी दृष्टि से ये पता नहीं चलता है कि ये इसकी चेतना है या नहीं है। तो ये चेतना पूरी तरह से ढकी हुई होती है। तो ये चेतना का पहला स्तर है भौतिक संसार में। दूसरा स्तर वो होता है जो पूरी तरह से श्रंकन, जो बिल्कुल ढका हुआ जो होता है, उससे थोड़ा आगे चलता है, बहुत ही कम मात्रा में जो चेतना विकसित होती है। तो जैसे कि कीड़े हैं और चींटियां हैं इत्यादि, पेड़ों के हिसाब से इस चेतना का विकास थोड़ा कुछ और अधिक हो जाता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक ढका हुआ होता है। फिर जब ये चेतना अंकुर की तरह हो जाता है, अंकुर चेतना, तब वो मनुष्य जीवन में पहुंच जाती है। तो चेतना एक बीज के बराबर है। बीज जब धीरे 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 से खिलकर फिर अंकुर बन जाता है, और अंकुर से आगे आगे खिलकर फिर फूल बन जाता है, और फिर फूल का जब विकास होता है, प्रफुल्लित हो जाती है, थोड़ी पंखुड़ियां वगैरह आती हैं, इस तरह से एक बीज का विकास होते रहता है। उसी तरह से चेतना का विकास होते होते पेड़ से फिर आगे चल के कीड़े मकोड़े तक आती है, फिर आगे चल के अंकुर के स्तर पर आती है। और ये अंकुर के स्तर जो है ये मनुष्य योनि है, जिसमें मनुष्य को या चेतना को या जीव को ये अवसर रहता है कि वो फिर से नीचे योनि में जाए या अपने चेतना को और आगे विकसित करता रहे, और आगे विकसित करके उस चेतना को बिल्कुल प्रफुल्लित कर दे, जिसमें से फूल खिलने लगता है। तो उस तरह से चेतना जब मनुष्य जीवन में दी जाती है तो वो केवल एक वजह से दी जाती है कि हम भगवान को जाने, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। और इस जिज्ञासा के लिए जब ये चेतना का प्रयोग हम करते हैं तो फिर हमारी चेतना खिल उठती है, जिस तरह से कि एक अंकुर खिल उठता है सुबह सुबह, और खिलने के बाद कितना सुंदर लगने लगता है। तो उसी तरह से जब मनुष्य अपने चेतना का प्रयोग भगवान को जानने के लिए करता है तो वो बहुत सुंदर बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल बाहरी रूप से सुंदर, हालांकि ये भी सत्य है, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं होते हमेशा उदास रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए लोगों के चेहरे कैसे होते हैं, बड़े उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं। लेकिन भक्तों के चेहरे देखिए, सोते सोते भागवतम क्लास में भी कितने प्रफुल्लित चेहरे होते हैं, खिले हुए चेहरे होते हैं। तो ये है भक्तों के गुण, भक्ति करने से इतना हो जाता है कि चेहरे के ऊपर एक तरह का उजाला आ जाता है, तेज आ जाता है, तो व्यक्ति खिलने लगता है। तो चेतना उसकी खिल उठी है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्रफुल्लित नहीं हुई है। लेकिन और आगे चल के जब जीव की भक्ति या जीव की आध्यात्मिक चेतना पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो वो अपने चेतना की परिपूर्णता में पहुंच जाती है, पूरे हुए खिले हुए फूल की तरह। जैसे सुंदर एक फूल बगीचे में है, कितना सुंदर लगता है, गुलाब का फूल, कमल का फूल, तो ठीक उसी तरह से चेतना का पूर्ण विकास तब होता है जब जीव कृष्ण भक्ति में परिपूर्णता प्राप्त कर लेता है। तो ये पांच तरह की पांच श्रेणी है चेतना की, और इन पांच श्रेणियों में दो श्रेणी केवल नीच योनि के हैं, और बाकी तीन जो श्रेणी है वो मनुष्य योनि में है। तो देखिए मनुष्य योनि में हमारे लिए हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला है कि चेतना का विकास एक अंकुर से लेकर हम एक पूरे खिले हुए फूल तक कर सकते हैं, जो कि पेड़ों में, कीड़ों में, पशुओं में, पक्षियों में नहीं है। केवल मनुष्य योनि में ही हमें अवसर प्राप्त होता है कि हम चेतना का विकास करें। और जो व्यक्ति चेतना का विकास करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है वो तो केवल पेड़ पौधे की तरह है। चेतना का विभाजन और एक तरह से भी किया जाता है, इसके लिए एक कहानी है। बहुत साल पहले की बात है कि ब्रह्मा जी के साथ वरिष्ठ पुत्र हुए चार कुमार। चार कुमारों ने विवाह करना इनकार कर दिया, कहा कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए संसार के माया जाल में हम फंसना नहीं चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन और कोई उपाय नहीं था, तो क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे इसलिए चार कुमारों के मन में हमेशा आध्यात्मिक जिज्ञासा हुआ करती थी। तो एक बार वो ब्रह्मा जी के पास आए और पूछने लगे अलग अलग तरह के प्रश्न कि योग की परिपूर्णता क्या है, सच्चा योग का अभ्यास कैसे हमें करना चाहिए और हमारी इंद्रियों और मन इनका स्वभाव रहता है, इनकी प्रवृत्ति रहती है कि वो माया के विषयों के प्रति आकृष्ट हो जाए, तो इनको माया के विषयों से अलग कैसे रखा जा सकता है, मन को इंद्रियों को शुद्ध कैसे रखा जा सकता है। तो उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माण के कार्य में उलझे हुए थे, कैसे इस लोक को की उत्पत्ति करना, प्रजा की उत्पत्ति कैसे करना, प्रजापतियों की उत्पत्ति कैसे करना, तो काफी बिजी थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्त, भगवान का भक्त, मंदिर के निर्माण के कार्य में थोड़ा व्यस्त रहता है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इधर उधर, और बीच में जाके कोई उसे पूछे प्रभु जी तीन गुणों के लक्षण क्या है, कहे यार ठहरो ठहरो अभी मुझे टाइम नहीं है, जब मैं कुछ व्यस्त हूँ कार्यों में। तो ब्रह्मा जी अपने कार्यों में व्यस्त थे और इतने व्यस्त थे कि उनको समय नहीं मिला और न ही उनको साफ तरह से वो जवाब दे पाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपने जो प्रश्न किए हैं मुझे इनका उत्तर सही तरह से नहीं मालूम। तो ठीक उसी समय भगवान के एक सुंदर अवतार उनके सामने प्रकट हुए। कैसे अवतार? हंस रूप में अवतार भगवान ने लिया, स्वान, और उड़ते हुए आए भगवान उनके सामने। चार कुमार ब्रह्मा जी देखते रह गए कि ये कौन अद्भुत पक्षी हमारे सामने आ गया, बड़ा सुंदर है रूप और ऐसा लगता नहीं है कि ये कोई साधारण पक्षी है। और ये थे हंस अवतार। तो भगवान के तो अलग अलग अवतार होते हैं, अनगिनत अवतार होते हैं, उनमें से ये भी एक है। भगवान किसी भी योनि में प्रकट हो सकते हैं, मछली के अवतार में आए हैं भगवान, कूर्म रूप में आए हैं, आधे नर आधे सिंह के रूप में आए हैं, तो हंस अवतार में क्यों नहीं आ सकते। तो हंस अवतार में आए और जब वहां आए तो चार कुमार और ब्रह्मा जी देखते रह गए और उन्होंने पूछा आप कौन हैं, आपका परिचय। तो साफ साफ उन्होंने पूछ दिया, पहचान नहीं पाए भगवान को। तो भगवान ने हंस अवतार के रूप में जवाब दिया, ये प्रश्न आपका बहुत गहरा है, आपने मुझे पूछा है कि आप कौन हैं, ये आप समझे हैं कि आपने प्रश्न क्या किया है, कि ये प्रश्न का महत्व क्या है, ये प्रश्न कितना गहरा है, क्या आप समझ गए हैं। आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, इसका मतलब क्या है। अगर आप समझते हैं कि आपकी आत्मा में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक ही हैं और मैं भी एक साधारण जीव हूं, तो फिर मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है तो आपके प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर आप समझते हैं कि मेरा शरीर इन जड़ पदार्थों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी जल वायु खम इत्यादि, तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए था कि आप पांच कौन हैं, क्योंकि आप पांच जड़ पदार्थों से बने हुए हैं, तो आप पांच कौन हैं, आपको ये शब्द पूछने, ये प्रश्न पूछना चाहिए था। लेकिन आपने ये प्रश्न नहीं पूछा, आपने पूछा कि आप कौन हैं। तो मैं अकेला हूं, मैं वो चेतना हूं जो कि इस संसार की तीन चेतनाओं से परे है। ये संसार की तीन चेतनाएं क्या हैं? एक को कहते हैं जागृति। आशा करते हैं कि आप सब इस चेतना की अवस्था में हैं। जागृति मतलब जिस अवस्था में हमारी बाहरी इंद्रियां संसार के विषयों से स्पर्श करती हैं, हम इन स्थूल आंखों से देख सकते हैं, इन स्थूल कानों से सुन सकते हैं इत्यादि, तो इसको जागृति कहते हैं। इसके अलावा और एक चेतना का स्तर है, हंस अवतार ने समझाया, जिसको कहते हैं स्वप्न। आशा है कि आप इस अवस्था में नहीं हैं। कभी कभी जागृति में होते हुए भी आंख खुले होते हैं, प्रवचन चल रहा होता है लेकिन मन कहीं और होता है, मन कोई और स्वप्न देख रहा होता है। क्योंकि शरीर तो एक जगह होता है लेकिन मन काफी भ्रमण करता रहता है, वर्ल्ड टूर में जाता है, फिर लौट के आता है राधा गिरिधारी मंदिर में। तो स्वप्न अवस्था में हम अलग अलग झूठे अवस्थाओं की कल्पना करते हैं। और तीसरी अवस्था हंस अवतार ने बताया, उसे सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति का मतलब है गहरी नींद, गहरी निद्रा। ऐसे निद्रा में हम ये भी भूल जाते हैं कि स्वप्न क्या चीज है, स्वप्न करना भी बंद कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जागृति की अवस्था वास्तव में यह सत्वगुण की अवस्था है, स्वप्न की अवस्था ये रजगुण की अवस्था है, और घोर निद्रा अर्थात सुषुप्ति की अवस्था तमोगुण की अवस्था है। तो हम इन तीनों गुणों का स्पर्श करते रहते हैं, लेकिन जागते हुए जब हम सोए हुए होते हैं तो सत्वगुण में स्थित होते हुए भी हम तमोगुण में चले जाते हैं। तो हंस अवतार ने चार कुमारों को और ब्रह्मा जी को कहा, मैं वो चौथा या चतुर्थ चेतना का स्तर हूं जिसको तुरिया कहते हैं, जिसको शुद्ध चेतना कहते हैं। मेरा इन तीन चेतना के स्तरों से कोई संबंध नहीं है, मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं परम भगवान हूं। और मुझे जो व्यक्ति जानने का प्रयास करता है, मुझसे जो स्पर्श करता है, जो व्यक्ति अपनी चेतना का स्पर्श मेरे से कर लेता है, उसकी चेतना भी शुद्ध हो जाती है, उस चेतना का विकास भी हो जाता है। इस तरह से हंस अवतार ने ब्रह्मा जी को और चार कुमारों को उपदेश दिया कि अपनी चेतना को उठाओ, ऊपर उठाओ और उसको पूरी तरह से शुद्ध करो। शुद्ध जागृत चेतना में हमें पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम ये बुद्धि नहीं है, बल्कि हम आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप है चेतना होना, चेतना आत्मा का लक्षण है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि ये चेतना शरीर के कोने कोने में हर एक अंग में फैली हुई है, लेकिन चेतना का उगम स्थान एक जगह में है और उस चेतना के उगम स्थान को आत्मा कहते हैं। जिस तरह से सूरज की किरणें हर जगह फैली हुई हैं, सब जगह देखिए सूरज की किरणें हैं, सब जगह उजाला लगता है। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो समझता नहीं है कि सूर्य उजाला कैसे आ गया है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है वो जानता है कि उजाला हालांकि हर जगह फैला हुआ है, फिर भी इस उजाले का कोई उगम स्थान है और वो है सूरज। तो पूरा ज्ञान का मतलब है उजाले को जानना और सूरज को जानना, सूरज और सूरज के किरणों दोनों को जानना आवश्यक होता है। तो उसी तरह से चेतना का उगम स्थान है आत्मा। जो आत्मा को और चेतना को दोनों को जान लेता है उसे पूरा ज्ञान होता है। एक बार एक राजा थे और राजा को ये शौक था कि अक्सर अपने मंत्रियों को बुलाया करते थे और उनको ऐसे कठिन प्रश्न करते थे कि वो डावाडोल हो जाते, उनको समझ में नहीं आता था कि इसका जवाब कैसे देना। जिस तरह से अकबर अपने मंत्रियों को बुलाकर अक्सर ऐसे प्रश्न किया करते थे, तो एक बार इस राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मुझे एक स्वप्न हुआ और इस स्वप्न में मैंने देखा कि मैं एक तितली हूं, बटरफ्लाई को तितली कहते हैं ना, मैं एक तितली हूं और मैं बहुत सुंदर बगीचे में बैठी हूं और बगीचे में बैठकर सुंदर सुंदर वह मधुर सुगंधित फूल हैं, एक फूल के ऊपर बैठकर वहां का अमृत का पान कर रही और फिर दूसरे फूल में, और इस तरह से सारे फूलों में जाकर अमृत का पान कर रही। और ऐसे सुंदर स्वप्न देखते देखते अचानक मेरा सपना टूट गया, और ये सपना जो है इतना सच मुझे लगा कि जब मेरा स्वप्न टूट गया और मैं नींद से जाग गया तो मेरे मन में ये प्रश्न आया, और यही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं। और अगर आप इस प्रश्न का जवाब सही तरह से नहीं दे पाओगे तो आपकी गर्दन में काट डालूंगा। तो सारे मंत्री घबरा गए, अब ये क्या मुसीबत आ गई हमारे ऊपर, अब कौन सा प्रश्न होगा सुने। तो राजा ने कहा, प्रश्न ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं राजा हूं जिसने सपने में देखा कि मैं तितली हूं, या मैं क्या वास्तव में तितली हूं जो इस वक्त सपना देख रही है कि मैं राजा हूं, ये मुझे बताइए। सारे मंत्री हड़बड़ा गए, अब ये क्या प्रश्न है, ऐसा प्रश्न तो हमने कभी सुना नहीं है। अगर राजा ने प्रश्न किया होता कि पड़ोस वाले राज में आक्रमण कैसे करना है, सेना को कैसे लाना है, तो हम जवाब दे सकते। अगर राजा ने पूछा होता कि अभी कर कितना जमा हुआ है प्रजा से, तो हम बता सकते। या हमारे सेना में कितने सैनिक हैं, ऐसे कुछ पूछा होता तो शायद हम जवाब दे पाते। लेकिन ऐसे गुगली डाल दी है राजा ने कि इसका जवाब कैसे देना है, सब लोग सोच में पड़ गए। राजा ने कहा, देखो गर्दन कटने वाली है, जवाब देना जल्दी से। तो सभी लोग कांपने लगे। अगर आप मंत्री होते तो आप क्या जवाब देते? इसके लिए हंस अवतार ने तो जवाब दे ही दिया था। हंस अवतार ने बताया था कि बद्ध अवस्था में जब हम भगवान को भूल गए होते हैं, हमारे तीन अवस्थाएं होते हैं चेतना के, एक है जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। तो चाहे हम इन तीनों अवस्थाओं में किसी भी एक अवस्था में क्यों न हो, अगर हम भगवान को भूले हुए हैं तो ये तीनों चेतना के अवस्था जो हैं, ये मिथ्या कहलाते हैं, झूठ कहलाते हैं, क्योंकि इन तीन अवस्थाओं में हम अपने आप को भोगी समझते हैं। जैसे इस वक्त हम जगे हुए हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद हम सो जाएं, सोते समय हम स्वप्न देखेंगे कि मैं बड़ा राजा हूं, मैं बड़ा फिल्म स्टार हूं, मेरे पास इतना धन है, तो ये तो मिथ्या है, झूठ है। और जब हम निद्रा में चले जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते हैं, तब तो हम पूरी तरह से विस्मृति में आ जाते हैं, पूरी तरह से सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, पूरी तरह से विस्मृति हो जाती है। स्वप्न अवस्था में भी एक अलग तरह की विस्मृति आ जाती है, जिसमें हम वो सोचते हैं कि जो सही नहीं है, हम सोचते हैं कि मैं राजा हूं, लेकिन जब स्वप्न से जाग जाते हैं तो जानते हैं कि मैं राजा नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और मुझे अभी ऑफिस जाना है, चर्च गेट के लिए 8:26 की गाड़ी पकड़नी है। लेकिन जागृति की अवस्था में भी हम स्वप्न देखते हैं, ये हम नहीं सोचते। क्या स्वप्न देख रहे हैं? कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं नवयुवक हूं, मैं नवयुवती हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये भी तो अलग अलग प्रकार के स्वप्न हैं, क्योंकि ये केवल उपाधि हैं शरीर के, आत्मा के तो कोई ऐसे उपाधि नहीं होती है। आत्मा की केवल एक उपाधि होती है, और वो क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। आत्मा का स्वरूप होता है कि वो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है, बस आत्मा का यही स्वरूप है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, जीव मेरा नित्य अंश है, कण मात्र। तीन, और उसे संघर्ष करना पड़ता है, चाहे हम जागृति की अवस्था में हो, स्वप्न की अवस्था में हो या निद्रा की अवस्था में हो, ये संघर्ष की चेतना है। लेकिन जब इसी चेतना को हम हंस अवतार ने जैसे बताया, वैसे भगवान के चरण कमलों में हम केंद्रित कर देते हैं, तो हम इन तीन स्तरों से परे हो जाते हैं। ये तीनों स्तर जो हैं, ये बद्ध जीवन के अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग स्तर हैं। लेकिन जो चौथा स्तर होता है चेतना का, इस अवस्था में हम इन तीनों से परे हो जाते हैं, बद्ध जीवन से परे हो जाते हैं, और शुद्ध चेतना में हम समझ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, भगवान कौन है। और ऐसे शुद्ध चेतना को कहते हैं कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति। तो भगवान की सेवा करने से हमारे हृदय में सारे जो अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे से भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत होता है और शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये जीव का स्वरूप है, शुद्ध चेतना का स्तर है। लेकिन भगवान को भूल कर, क्योंकि हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, इसलिए भगवान को भूल गए। तो पुनः भगवान की स्मृति को जागृत करना हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस तरह से हमारी चेतना खिल उठती है। इसलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न चित्त के होते हैं। तो इसी तरह से राधा गिरिधारी जी के शरण में यहाँ हम सब हैं, इनकी सेवा करते हुए हमारे चेतना का विकास करते रहना है। और हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करके, श्रीमद् भागवत का पाठ करके हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न इत्यादि की, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर प्रमाण। Yeah.
Thank you. Thank you. बहती करित
पति चतुंभ निर्भर शरीर Thank you.
Thank you.